Progress.
بالظبط. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتشار نعم شين شكرا لأصل في صمته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो जो अभी आयत तिलावत की गई है 61 से लेके नहीं 62 से लेके 66 तक की आयत हैं सूरह यूसुफ की। इनकी हम तफसीर पढ़ रहे हैं मारफुल कुरआन जिल्द नंबर 5 से, और पूरा पेज नंबर 100 के ऊपर इस वक्त हम हैं। तो सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान फरमाते हुए अब आगे मजीद फरमाते हैं कि फलम मा रजाऊ इला अबीहिम, बस जब वो पहुंचे अपने बाप के पास यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास, वो मिस्र से लौट करके गल्ला लेकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम से, जिनका उनको नहीं पता था कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, तो वो अपने वाले साहब के पास वापस पहुंचे। रजाऊ इला अबीहिम, ठीक है, रुजू किया। रुजू का मतलब होता है वापस जाना या वापस आना, ठीक है। तो वो वापस पहुंचे तो कालू या अबाना, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बू, ए हमारे वालिद साहब, मुनिआ मिन्नल कैलू, हमें मना कर दिया गया है यानी मजीद वजन देने से, मजीद नापने से। कैल का मतलब क्या होता है, नापना तोलना वगैरह। तो यानी जितना हम ले आए हैं ना उससे ज्यादा से हमें मना कर दिया गया है, ठीक है। मुनिया पैसिव टेंस हुआ, मना कर दिया गया। फअरसिल माना, बस भेज दीजिए हमारे साथ अखाना, हमारे भाई को, नक्तल व इन्ना लहू लहाफिजून, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए कि भर कर ले आए, एक ताला एक तालु एक तालन। तो हमें भर कर, यानी ताकि हम जो है ना वो भर करके ले आए, यानी दोबारा हम जाएं और जितना बाकी बच गया है ना उसको भी ले करके आ जाए, ठीक है। और वह इन्ना लहू लहाफिजून, और बेशक हम तो उसके हिफाजत करने वाले हैं, ठीक है। लहाफिजून, जरूर बिल जरूर हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं, यानी हम उसकी हिफाजत करेंगे। अरबी जुबान का ये कॉन्स्ट्रक्ट है कि हम हिफाजत करेंगे की बजाय जो है ना वो हम हिफाजत करने वाले हैं, ऐसे बयान करते हैं। उर्दू में हम इस अंदाज से बात नहीं करते, लेकिन अरबी में इसी अंदाज से बात की जाती है। तो इस वजह से जो जो अगर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की जाए तो फिर उर्दू वाला शख्स जो है ना, जिसको उर्दू ही आती है, तो वो अरबी के लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे से बात नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उर्दू में ऐसे बात नहीं की जा रही होती है। इस वजह से बामुहावरा ट्रांसलेशन कम अज कम जरूरत जरूरी होती है। तो इन्ना लहू लहाफिजून, अच्छा ये अल्फाज जो हैं वो उन्होंने उस वक्त भी कहे थे कि जबकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मांग के ले जा रहे थे, अरसिलहु माना के भेज दीजिए उसको हमारे साथ, गदन यरता व यलअब कि कल उसको हम जो है ना वो खूब वो खाएगा हमारे साथ और खेलेगा हमारे साथ, व इन्ना लहू लहाफिज़ून और हम तो उसकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही अल्फाज जो है वो उस वक्त भी कहे थे, बस उस वक्त जो है वो खेलने कूदने के लिए ले जा रहे थे, तो इस वजह से खेलने कूदने का लफ्ज इस्तेमाल किया बीच में। और इस वक्त जो है वो बिन्यामीन को ले जा रहे थे ताकि साधो सामान यानी खाना पीना और लेकर के आ सके। काला याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हल आमनुकुम अलैहि, क्या मैं एतबार करूं, क्या मैं ईमान ले आऊं तुम्हारी बात पर, इसके मामले में भी, अलैहि इसके मामले में भी एतबार कर लूं तुम्हारी बात पर। ठीक है, आमनुकुम, आमनुकुम का लफ्ज ईमान लाना, ईमान ये वही लफ्ज है। ठीक है, तो ईमान किस चीज को कहते हैं, ईमान लाना किस बात को कहते हैं, ईमान लाना एतबार करने को कहते हैं। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जो कुछ बता दिया उसके ऊपर हम एतबार कह करते हैं, क्योंकि हमने जा करके उसको देखा नहीं, हमने उसको सूंघा नहीं, हमने उसको छुआ नहीं, हमने उसको सुना नहीं, ना हमने फरिश्तों की आवाज सुनी, ना हमने अल्लाह ताला को देखा, ना हमने अर्श को देखा, ना हमने आसमानों को देखा, ना हमने जो है वो पिछले रसूलों को देखा, ना हमने किताबों को उतरते हुए देखा। ठीक है, कि ये जो दुनिया में मौजूद है ये ऊपर से उतरी हुई किताबें हैं, ना हमने तकदीर को कहाँ लिखी हुई है ये तकदीर उसको देखा, ना हमने आखिरत को देखा, कुछ भी हमने नहीं देखा, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा ने देखा, हमने तो नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं देखा। तो हम एतबार करते हैं नबी अलैहिस्सलाम की बात का। ठीक है, तो हमने तो नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं देखा, तो हम फिर किसका एतबार करते हैं, हम उनका एतबार करते हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा। ठीक है ना, यानी सहाबा कराम। अच्छा, हमने तो सहाबा कराम को भी नहीं देखा, तो हम कैसे सहाबा का एतबार करें कि उन्होंने नबी नहीं, तो फिर सहाबा के बाद जो आए उनका एतबार करते, अच्छा फिर हमने उनको भी नहीं देखा। भाई ये यही सिलसिला चला चला जा रहा है। ठीक है, तो हम जो है ना फिर किसका एतबार करते हैं आज के दौर में, हम किसका एतबार करते हैं, हम जिनको देखा है उनका एतबार नहीं करते, हम किसका एतबार करते हैं। अगर कोई इस नुक्ते को खोले कि आज के दौर में हम किसका एतबार करते हैं, हमने यानी इंसानों का एतबार करते हैं कि उन्होंने उनको देखा, फिर उन्होंने उनको देखा, फिर उन्होंने उनको देखा, फिर उन्होंने उनको देखा। ठीक है ना, नहीं मतलब मैं जरा मनफी अंदाज में बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। ठीक है, हम उलमा का एतबार करते हैं, तो उलमा का एतबार तो खत्म करने के ऊपर सारी की सारी मेहनत हो चुकी है, तो उलमा के ऊपर से तो एतबार तकरीबन सबका खत्म हो गया है, हम किस पर एतबार करते हैं। यानी आज का एक मुसलमान वो दीन की नॉलेज जो है वो कहाँ से लेता है, मीडिया से, तो मीडिया के लिए एतबार करते हैं ना, लेकिन दीन की बातें वो कहाँ से लेता है, वो किस पर एतबार करता है। नहीं, ये ठीक है, इंटरनेट के ऊपर वो खबरों के लिए एतबार करता है और जो है वो एनालिसिस के लिए एतबार करता है। ठीक है, लेकिन हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम का क्या मतलब था, उसके लिए आज का मुसलमान किस पर एतबार करता है। एग्जैक्टली, माशाल्लाह सही उन्होंने जवाब दिया, किताब के ऊपर एतबार, किताब के ऊपर। ठीक है, तो ये किताब जो है ये किधर से आती है, ये मुझे बताएं, किताब किधर से आती है। ठीक है ना, किताब पे अप्लाई, हम कुरान मजीद की तफसीर पे हम हमारा ज्यादा बिलीव होता है, हमारा जो है वो हदीस के ऊपर ज्यादा बिलीव होता है, हमारे ऊपर बाकी किताब में जो कुछ लिखा है उस पर हमारा ज्यादा ट्रस्ट होता है। ठीक है ना, जिंदा इंसानों पे ट्रस्ट नहीं होता। तो किताब पे ट्रस्ट होने का मतलब क्या है कि हमारा ट्रस्ट किसके ऊपर है, नहीं ऑथर ऑफ द बुक के ऊपर भी नहीं है, हमारा ट्रस्ट जो है ना वो किसके ऊपर है, हमारा ट्रस्ट है प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, प्रिंटिंग प्रेस वालों के ऊपर हमारा ट्रस्ट है। ठीक है ना, छापे खाने वालों के ऊपर हमारा ट्रस्ट है। क्यों, इसलिए कि हमें क्या पता कि छापे खाने वाले ने जो है वो किताब में कुछ रद्दो बदल कर दिया हो, राइट, हमें क्या पता, कि प्रिंटिंग प्रेस वाले ने जो किताब को टाइप करवाया, उसकी टाइप सेटिंग करवाई, उसकी कंपोजिशन करवाई, उसको जो है वो उसकी कॉपियां छापी, तो उसमें उसने तब्दीली नहीं कर दी। हमें क्या पता, हमने कोई देखा है जाकर के प्रिंटिंग प्रेस को? हमने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस वाले के जो है वो पूरे के पूरे प्रोसीजर को, प्रोसेस को जो है वो हमने चेक किया है कि जैसी किताब उसके पास पीछे से आई थी उसने वही किताब छाप करके आगे दी है? हमने कोई चीज वेरीफाई करी है? नहीं, हमने तो कुछ भी वेरीफाई नहीं किया होता। हमने तो बस एक छपी हुई किताब जो है वो मार्केट से खरीद ली होती है, ठीक है ना? लेकिन देखिए हमारा एतबार उसके ऊपर कितना होता है कि उसमें जो छपा होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो हम किस पे एतबार कर रहे हैं? हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके ऊपर जो जिस ऑथर का नाम लिखा हुआ है तो वाकई उस ऑथर की लिखी हुई किताब है या किसी और की लिखी हुई किताब है, राइट? देखिए बिल्कुल, यानी इसको ग्रैन्यूलराइज करें, जिस क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल जो है ना वो एटॉमिक लेवल के ऊपर जाकर के अगर आप सोचें तो आपका एतबार किसके ऊपर इस वक्त है? दीनी नॉलेज के बारे में। मैं मीडिया इंफॉर्मेशन उन सब चीजों की बात नहीं कर रहा, दीनी नॉलेज के बारे में। हमारा एतबार प्रिंटिंग प्रेस वालों के ऊपर है, ठीक है, कि उन्होंने खुर्द बुर्द नहीं किया होगा, ठीक है ना? तो जो मौलाना साहब होते हैं वो हमें बात समझा रहे होते हैं, शेख साहब हमें बात समझा रहे होते हैं, वो आम इंसान का अब उसके ऊपर एतबार नहीं है, ठीक है? सही है भाई, जरा बहुत यानी डीप जाकर के सोचे ना इस बात को कि हमारा एतबार कितना है प्रिंटिंग प्रेस वालों के ऊपर दीनी नॉलेज के बारे में, ठीक है ना? तो बात समझ में आएगी कि हाँ वाकई हमारा उनके ऊपर एतबार है जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, जिनके प्रोसेस से हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, ठीक है ना? जिनकी मशीनों से हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, जो कंपोजर बैठा हुआ जो है वो किताब को टाइप कर रहा था हम उससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, लेकिन हमें उसके बाद उसके ऊपर एतबार है, उसने खुर्द बुर्द नहीं किया होगा किताब के अंदर। कहने का मकसद ये, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, कहने का मकसद ये है कि हम अपने जो गलत फहमी है ना हमारे, उनको गलत फहमियों को शैटर करने की जरूरत है, बड़ा शदीद जरूरत है इस बात को कि हमारी इन गलत तसव्वुरात को जो है ना वो तोड़ा जाए, शैटर किया जाए, ठीक है ना? और हम अपने गलत फहमियों से बाहर निकलें और फिर हम सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना? तो इंसानों को हम जानते हैं, इंसानों के साथ हम रहते हैं, उनके अच्छे अखलाक को भी देखते हैं, उनके किरदार को भी देखते हैं कि भाई वो बुरे लोग नहीं होते हैं, अच्छे सीधे साधे पूरे मुआशरे में इस वक्त जो है बेहतरीन लोग जो हैं वो अहले हक उलमा और अहले हक मदारिस के जो रहने वाले होते हैं। कंपैरेटिवली स्पीकिंग नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कोई खराबी ना हो, कोई भी गलती कोताही ना हो, ठीक है ना? तो बेस्ट ह्यूमन बीइंग इस वक्त जो है वो अहले हक उलमाए कराम और अहले हक जो है वो मदारिस को लोग होते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना? उसकी वजूहात हैं, एक तो ये कि वो अगर रोक टोक करें तो हमें वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, हमारे नफ्स के ऊपर वो शदीद बुरी गुजरती है, हम रोक टोक बिल्कुल भी किसी से सुनना नहीं चाहते, हमारा नफ्स इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है, ठीक है ना? इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, हमारा नफ्स अम्मारा जो है ना वो, हमारे नफ्स की हालत यही है, हमें कोई बोलता हुआ हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? किताब बोलती नहीं है, किताब हमारी रोक टोक करती नहीं है, ठीक है ना? तो ज्यादा आसान ये है कि हम किताब के ऊपर या प्रिंटिंग प्रेस वालों के ऊपर ट्रस्ट कर लें, क्योंकि उन्होंने तो आकर के हमारी इसलाह नहीं करनी ना, इसलाह जो है वो शेख मौलवी साहब ने करनी है। तो एक तो रीजन, सबसे पहली और सबसे बड़ी रीजन हमारा अपना नफ्स है बस, फिर उसके बाद आप दूसरी रीजन को भी देख सकते हैं। दूसरी रीजन क्या है? डाकू। कौन है भाई डाकू? कौन से डाकू? दीन के डाकू, ठीक है ना? डाकू जो है ना वो दूसरी रीजन है, उन डाकुओं की वजह से हम दीन के ऊपर एतबार नहीं करते। कौन से वाले डाकू? दीन के डाकू, जो दीन को चुरा चुराना चाहते हैं, जो दीन को खराब करना चाहते हैं, दीन की हकीकत को जो है ना वो निकाल देना चाहते हैं, ये होते हैं दीन के डाकू। और दीन के जो डाकू होते हैं उनको सबसे सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे होती है? वही जो कि हर डाकू को सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे होती है? डाकू के रास्ते में जो रुकावट होता है वो कौन होता है भाई? डाकू के रास्ते में रुकावट कौन होता है? बर्गलर के रास्ते में, ठीक है ना? रुकावट कौन होता है? चौकीदार, राइट? पुलिसमैन, आर्म्ड गार्ड्स, है ना, जो कि खजाने के की हिफाजत करने के ऊपर मामूर होते हैं। डाकू को सबसे बड़ी मुसीबत उसी के साथ होती है, क्योंकि अगर ये ना होते तो आसानी से जाकर के खजाना लूट करके ले जाता। ये मुसीबत है, इनसे लड़ना पड़ता है, इनको ठिकाने लगाना पड़ता है, पहले इनको मारना पड़ता है, पहले इनको खराब करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर के खजाने तक रसाई होती है और उसको चुराया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो डाकू है ना, दीन के डाकू, ये रोजे अजल से जो है वो दीन के चौकीदारों के मुखालिफ हैं। दीन के पहले चौकीदार कौन थे? सहाबाए कराम। पहले चौकीदार, पहले जो है मुहाफिज थे दीन के, दीन का इल्म जो कि नबी अलैहिस्सलाम से मिला इंसानों को, उसके मुहाफिज पहले कौन थे? सहाबाए कराम। तो जो दीन के पहले डाकू हैं वो सहाबाए कराम के दुश्मन, ये पहले डाकू हैं सहाबाए कराम के दुश्मन, और फिर आज के दौर तक ये डाकुओं का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो इसी वजह से ये जो दीन के दुश्मन है ना, जिनमें सबसे आगे जो है वो यहूद, यहूदी, ठीक है ना, क्योंकि इनको जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस दीन के आने से। इनकी चौधराहट, इनकी जो है ना वो जो दीनी इनका एक मुकाम और मर्तबा था, लोग उनकी इज्जत किया करते थे, है ना। इनसे पूछने के लिए जो औस और खजरज के कबाइल थे मदीना मुनव्वरा के, यसरब के, औस और खजरज के कबाइल, वो भी इनको दीनी पेशवा माना करते थे। इनसे जो है वो यानी सीख चीजें मानते थे, इनको अहले किताब माना करते थे, इनकी बड़ी इज्जत और बड़ी कदर थी यहूद की मदीना तैयबा के अंदर भी। और मदीना तैयबा तो क्या, मक्का मुकरमा वाले भी इनको जो है वो आलिम माना करते थे, इनको पेशवा माना करते थे, इनको जो है ना बड़ी कदर वाला माना करते थे। जब कोई सवाल आता था ना उनको कि भाई यहाँ पे पुराने अंबिया का क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वेरिफिकेशन करने के लिए कहाँ भेजा अपने बंदों को, इन्हीं यहूद के पास भेजा, राइट। तो इनका एक टैका था, इनका एक मुकाम था, एक मर्तबा था, इनकी इज्जत थी, इनका जलाल था लोगों के ऊपर, राइट। ये लोगों को लड़वाते भी थे और असलहे भी सप्लाई किया करते थे। औस को एक कबीला सप्लाई करता था, खजरज को दूसरा कबीला सप्लाई करता था, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद इनका सारा का सारा जो ये महल था ना, ये सारा का सारा जो है वो जमी बोस हो गया, चिकना चूर हो गया इनका सब का सब, ठीक है ना। तो इनको जितनी शदीद नफरत है नबी अलैहिस्सलाम से और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम से, क्योंकि सहाबा कराम के साथ मिलकर के नबी अलैहिस्सलाम ने ये सारा का सारा निजाम किया था, अकेले तो नहीं किया था, अकेले नबी जो है वो तो बनी इसराइल में किया करते थे काम, ठीक है ना। इस उम्मत के अंदर तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो है अल्लाह ताला ने वुजरा भेजे, अबू बकर व उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम और उस्मान व अली और बाकी सारे के सारे वजीरों की और हेल्पर की जो है टीम थी, उस सब ने मिल करके जो है नबी अलैहिस्सलाम के साथ काम किया है। तो यहूद को सबसे ज्यादा जो पहली दुश्मनी थी वो सहाबा कराम के साथ, उन्होंने पूरा एक तबका क्रिएट कर दिया इस उम्मत के अंदर धोखा दे करके, कि जो कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन सहाबा से शदीद नफरत करने वाले लोग। और ये उस वक्त से लेके आज तक जो है ना ये दीन का को डाका डालने का काम कर रहे हैं। आप इनके जो जो यहूद के आज के दौर में, अभी चंद दिन पहले साजिश ने एक वीडियो जो है ना वो मर्दों के साथ शेयर करी है, उसके अंदर एक यहूदी बैठ करके यही कह रहा है, ठीक है, कि कुरान मजीद की जो है ना, ये जो इनका कुरान है ना मुसलमानों का, इसकी इन ऑफ इट सेल्फ तो कोई वैल्यू नहीं है, इन उसके हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो सारा का सारा जो दीन है ना, ये है इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस, जिसको कि ये फिका कहते हैं, उसूल फिका ये कहते हैं। तो इस उसूल फिका जो है ना, इसके अंदर जो है वो सारा का सारा मसला है। और इसको कौन लोग, इस फिका को किन लोगों ने मुरतब किया है? उलमाए कराम ने मुरतब किया है। तो ये उलमा जो है ना, ये हमारे रास्ते की रुकावट है। बाकायदा इन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, इसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, इसके ऊपर इन्होंने आपस में बैठ करके मीटिंग्स करी हैं, कई सा 100 साल से ये काम कर रहे हैं कि इस दीन को दुनिया से खत्म करना, इस दीन का हुलिया बिगाड़ करके जो है वो इसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना, किसी काबिल ना छोड़ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन उलमा को जो है ना ये खराब करना पड़ेगा, इन उलमा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो रास्ते से नहीं हटते उनको खराब करना पड़ेगा, जो खराब नहीं हो सकते उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहूद जो है ये इस दीन के दुश्मन, इस दीन के डाकू हैं, और ये उलमा के सबसे पहले और सबसे बड़े जो हैं वो दुश्मन हैं, और फिर इन्हीं के यानी जो जो तैयार किए हुए लोग हैं वो बाकी फिर दूसरे लेवल के दुश्मन हैं। ठीक है, तो आमनुकुम का मतलब है ईमान लाना, ईमान लाने का मतलब है एतबार, और एतबार जो है ना वो अगर खराब हो जाए ठीक है तो फिर उसके बाद ईमान नहीं रहता, जब अगर एतबार नहीं रहा तो ईमान नहीं रहा। ठीक है, तो जो चीज आप तक पहुंची है, जो दीन आप तक पहुंचा है, अगर उसके पहुंचाने वालों के ऊपर एतबार नहीं रहा तो फिर कुछ भी ना रहा। प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर एतबार की क्या हैसियत है? प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर क्या एतबार करते हो? एतबार तो इंसानों के ऊपर किया जाता है ना, और दीन तो इंसान के वास्ते से दुनिया के अंदर आए, कोई प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से थोड़ी दीन दुनिया के अंदर आए कि उसके ऊपर एतबार करके जो है वो समझ रहे हैं बड़े दीनदार हो गए। ठीक है, तो आमनुकुम अलैहि काला, उन्होंने कहा कि हल आमनुकुम अलैहि कि मैं तुम्हारे ऊपर एतबार कर लूं इसके बारे में भी, इल्ला कमा आमिनतुकुम अला अखीही मिन कबल, मगर वही जैसे कि मैंने एतबार किया था तुम्हारे ऊपर इससे पहले इसके भाई के बारे में, यानी इसका जो सगा भाई था यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके ऊपर जैसे मैंने एतबार किया था इससे पहले। अल्लाह खैरुन हाफिज़, बस अल्लाह ताला ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला, वह हुआ अरहमुर्राहिमीन, और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है तमाम रहम करने वालों में से, राहिमीन में से अरहम कौन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला कौन है, वो कौन? अल्लाह। ठीक है, वलम्मा फतहु मताअहुम, और फिर उसके बाद जब ये कॉन्वर्सेशन इनकी हो चुकी तो उसके बाद जो है ना वो अपना सामान वामान उतारने के लिए जब गए ना, तो जब उन्होंने अपने जो सामान लेकर के आए थे मता, ठीक है मता मतलब अपना लगेज जो लेकर के आए थे उसको खोला, वजदू बिदाअतहुम, तो वहां पर उन्होंने अपनी जमा पूंजी जो पूंजी वहां पे पेमेंट करके आए थे ना, जो पेमेंट करके आए थे वो पाई उन्होंने अपने सामान के अंदर, वजदू उन्होंने पाई, बिदाअतहुम रुद्दत इलैहिम जो लौटा दी गई थी उनकी तरफ। ठीक है, रुद्दत इलैहिम जो रद्द करने का मतलब होता है लौटा देना। ठीक है, तो जिस होता ना कि किसी अमल को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया तो क्या मतलब कि हमने अमल अल्लाह की तरफ भेजा, जब हम कोई अमल करते हैं तो वो अमल जो है ना वो फरिश्ते हमसे लेकर के अल्लाह की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, और अगर अल्लाह उसको कबूल कर ले तो उसको फिर हमारे दाएं नामे अमाल के अंदर लिखवा दिया जाता है, वो हमारे लिए आखिरत का जखीरा भी बन जाता है और दुनिया के अंदर भी बरकतों का सबब बन जाता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला उसको नापसंद कर दें, उसको रद्द कर दें, तो वो क्या मतलब, वो हमारे मुंह पे मार दिया गया, हमें लौटा दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो इसी वजह से सिर्फ अमल कर लेना काफी नहीं होता, उसको कबूलवाना भी होता है। कबूलवाने के लिए नीयत सही होनी पहली शर्त है, और तरीका नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो ये दूसरी शर्त है। ठीक है, तो रुद्दत इलैहिम ये लौटा दिया गया, उसकी जो लौटा दिया गया था उसकी तरफ। ठीक है, तो कालू फिर वो अपने वाले साहब के पास भागे भागे आए, या अबाना मा नबगी, ओ हमारे अबू मा नबगी, व्हाट एल्स डू वी नीड, व्हाट एल्स डू वी वांट, माँ अगर मौसूला तो उसका तर्जुमा होगा कि सॉरी माँ अगर इस्तफहामिया सवालिया तो फिर हमें और क्या चाहिए, मा नबगी, या अगर माँ नाफिया होगा तो उसका मतलब ये होगा, नफी करने वाला जो माँ होता है इस अरबी में, तो उसका मतलब ये हो कि हमें नहीं चाहिए कुछ और। ठीक है ना, अब हमें हमें तो हमारी प्राइस वापस मिल गई, अब हम अगला जो खरीद के लाएंगे ना वो इसी प्राइस से खरीद लेंगे, हमें मजीद प्राइस आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, बहरहाल तो ये उन्होंने कहा अबू के पास आकर के, हाद ही बिलवा रुद्दत इलैना, ये हमारी जो करेंसी थी, जो पूंजी थी, जो हम वहां पेमेंट करके आए थे, रुद्दत इलैना ये हमारी तरफ लौटा दी गई है। ठीक है, क्योंकि ये कोई गलत फहमी की वजह से नहीं आई है, ये उनके बंदों ने खुद ही जो है वो बाकायदा पैक करी है हमारे सामान के अंदर। ठीक है ना, एक होता है ना कि भाई बटवा किसी का गिर गया हो तो गिरता है तो वही एक अंदाज से गिरता है, देखने वाले को भी पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो है ना वो इंटेंशनली नहीं डाला गया। एक होता है आप बाकायदा किताबों यानी कपड़े के तह के अंदर किसी का बटवा जो है ना वो अंदर बाकायदा पैक करें, तो देखने से पता चल जाता है कि भाई ये इंटेंशनली पैक किया गया है, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने यकीन के दर्जे में बोला कि ये हमारी तरफ लौटाया गया है, हमें ये वापस किया गया है इंटेंशनली। वन अमीरु अहलना, और हम यानी अब जाएंगे तो हम रसद लाएंगे अपने घर को। इसके लफ्ज का प्रॉपर यानी हम रसद लेकर आएंगे। नमीरू मारा या मीरू, हम जा करके जो है ना वो अब मजीद लेकर के आएंगे सामान रसद, ठीक है। अहलना अपने घर को, अपने घर वालों की तरफ। व नहफ़ज़ु अखाना, और हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की, यानी जो हम आपसे मांग के अब लेकर के जिसको जा रहे हैं बिन्यामीन को, हम उसकी हिफाजत करेंगे। व नज़दादु कैला बईर, और हम एक ऊंट के बकदर मजीद लेकर के आएंगे, ठीक है ना। पहले तो एक ऊंट जो है वो कम था ना, क्योंकि एक भाई को हम कम लेकर के गए थे, अब हम मजीद एक ऊंट के बराबर लेकर के आएंगे, मजीद लेकर के आएंगे, ठीक है। जाले का कैलुई यसीर, और ये तो बड़ा बड़ा आसान जो है वो कैल हो जाएगा, यानी तो बड़ा आसान जो हमने ये जो अब हमें एक्स्ट्रा वजन मिलेगा ना वहां पे जा करके, ये तो बड़ा अब आसान हो जाएगा कि हमें अब नई कीमत भी नहीं देनी पड़ेगी। काला, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि लन उरसलहू माकुम, मैं हरगिज नहीं भेजूंगा उसको तुम्हारे साथ, हम मैं हरगिज इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। हत्ता तो उतूनी, हत्ता कि तुम इसको वापस यानी लाने का मौसिका मिन अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला का अहद दो, यानी मुझसे अल्लाह की कसम खाओ कि तुम जो है ना वो यानी मुझे मुझको अल्लाह की कसम दो। तो उतूनी का मतलब तुम दो मुझे मौसिका मिन अल्लाह, कसम अल्लाह की, ठीक है। लता तुन्ननी भी, कि तुम उसको जरूर बिल जरूर मेरे पास वापस लाओ, ठीक है। लामे ताकीद बा नून सकीला, जरूर बिल जरूर तुम उसको मेरे पास वापस लेकर के आओगे, यानी ये टेंस जो है ना वो बड़ा ही एम्फेसिस, डबल एम्फेसिस वाला टेंस याकूब अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया। इल्ला अय्युहाता बिकुम, सिवाय इसके के तुम जो है ना वो यानी मजबूर कर दिए गए हो, यानी कोई तुम्हारे ऊपर जो है ना वो कोई ऐसी मुसीबत आ गई, कोई ऐसा मामला पेश आ गया जो कि तुम्हारे अपने इख्तियार में नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से था, वो कोई ऐसा बड़ा मामला था, तो तुम मजबूर हो गए, अब तुम उसको नहीं ला सके मेरे पास। तो फिर तो ठीक है भाई, आई आई अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं हो, तो इस वजह से मैं तुम्हें अल्लाह की कसम का जो कह रहा हूँ ना, तो मैं उसमें एक एक्सेप्शन भी निकाल रहा हूँ, खुद तुम्हारी तुम्हारी तरफ से एक एक्सेप्शन निकाल रहा हूँ कि इस कोई ऐसा मामला पेश आया है, ठीक है। युहाता बेकुम, सिवाय इसके कि तुम मजबूर कर दिए गए हो, तुम घेर लिए गए हो। इहाता करना कहते हैं ना उर्दू में घेर लेने को, तो यू हैव बिन सराउंडेड बाय सच सर्कमस्टांसेस, सच अ सिचुएशन दैट यू आर अनएबल टू फुलफिल योर प्रॉमिस, ठीक है ना। तो इल्ला अन युहाता बिकुम का यह मतलब होगा। इसके लिए एक बड़ी फ्रेंच की एक टर्म है जो कि ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ये जो कंपनियां वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है ना एक दूसरे के साथ, कि हम वादा करते हैं कि हम ये तुम्हें, ये हम सर्विसेज डिलीवर करेंगे, ये हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, ठीक है ना, और हम इतने दिनों में उसको डिलीवर कर देंगे, तो उसमें ना आखिर में जो है ना वो एक हेडिंग लगाते हैं फोर्स मेजोर, ठीक है। फोर्स मेजोर का मतलब ये होता है कि सिवाय इसके कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हम मजबूरन नहीं कर सकते, जैसे जलजला आ गया, अब जलजला आ गया तो उससे जो है ना वो हमारा जो है वो चीजें खराब हो गई, टूट गई, लोग मर गए, ठीक है ना, बिल्डिंगें जो है वो जमीन बोस हो गई, अब हम कैसे डिलीवर करें भाई। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख देते हैं जलजला या तूफान या कोई ऐसी यानी जंग फूट पड़ी, राइट, कोई इस किस्म के जो है ना वो अफरा तफरी इंसानों में फैल गई कि कि अब जो है वो कर्फ्यू लग गया। हमारे यहाँ तो हर वक्त कर्फ्यू लगता रहता था, किसी बात पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वो कर्फ्यू लग गया, अब कैसे भाई डिलीवर करें। तो गोया के इल्ला युहातबिकुम फोर्स मेजोर, ठीक है। जो लोग इस जुबान को समझते हैं तो वो जानते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो उन्होंने ये भी एक क्लॉज जो है ना, फोर्स मेजोर क्लॉज भी जो है वो रख लिया। फलम आताउ आताउ हु मौसिकहुम, बस जब जब दिया उन्होंने मौसिकहुम अपना वादा, ठीक है ना, मौसिकहुम अपना वादा उन लोगों ने यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने याकूब अलैहिस्सलाम को दे दिया, ठीक है। तो फिर काला, उसने कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया, अल्लाहु अला मा नकूलु वकील, अल्लाह ताला जो है ना वो जो हमने कहा है आपस में, जो हमने बातचीत करी है ना, ठीक है, ये वादे की, और फिर मैंने तुमसे वादा मांगा, फिर तुमने वादा मुझे कर दिया, वादा दे दिया, तो ये सारी कॉन्वर्सेशन के ऊपर अल्लाह ताला वकील है, निगहबान है, इसकी वकालत करने वाला है, यानी इसको जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपने पास लिख लिया है, फरिश्तों से लिखवा दिया है, ठीक है। क्योंकि वकील का एक काम जो है वो ये भी होता है कि वो मुकदमे को जो है ना वो रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, इसके लिए यानी इसके लिए भी एक वकालत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। एक तो दलाइल देने वाले को वकील कहते हैं ना, एक होता है रिकॉर्ड करने वाले को भी, तो कोर्ट रूम के अंदर जो है ना रिकॉर्ड करने वाले भी होते हैं। अब मजे की बात यह है कि अगर किसी को नई नई, किसी हमारे जैसे ना नई नई अरबी सीखी है, नहव वगैरह पढ़ी है, तो वो कहेगा अच्छा काला जो है वो फेल है, अल्लाह जो है वो फाइल है, क्योंकि ये हालत रफा में है। तो काल अल्लाह का मतलब तो होगा अल्लाह ताला ने कहा, अला मा नकूलु वकील, ठीक है। तो फिर वो समझ गए होंगे जिनको थोड़ी बहुत भी नहव आती है कि भाई वो कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुल्ला खतरा है ईमान, ठीक है, या नीम अरबीदान खतरा है कुरान, ठीक है, कुरान की तफसीर को जो है वो खतरा बन जाएगा, ठीक है। तो बजाय लगता है कि जी अल्लाह ताला ने कहा, काल अल्लाहु, लेकिन ये काला जो है वो अलग है, और वो कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो हमारा, यानी ये एक जुमला है फेलिया है, और आगे जो है वो जुमला है इस्मिया है, अल्लाह अला मा नकुलु वकील, मफूल जो है ना वो पूरा का पूरा जुमला इस्मिया है। बहरहाल तो नहीं है तो छोटी सी, अच्छा खुलासा तफसीर हम शुरू करते हैं, किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, या कोई कमेंट है। अच्छा सॉरी याद आया, जूम की विंडो ही बंद थी, चलो शुक्र है किसी ने कोई सवाल नहीं किया। अच्छा खुलासा तफसीर में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह इन आयात के तहत लिखते हैं कि गर्ज जब लौट कर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो कहने लगे कि ए अब्बा, हमारी बड़ी खातिर हुई और गल्ला भी मिला। ये तफसीरन बयान कर रहे हैं, कुरान मजीद के अल्फाज में इसका मानी नहीं है। तफसीर में लिखते हैं कि हमारी बड़ी खातिर हुई और गल्ला भी मिला, मगर बिन्यामीन का हिस्सा नहीं मिला, बल्कि बिदून बिन्यामीन के, यानी विदाउट बिन्यामीन, बगैर बिन्यामीन के साथ ले जाए हुए भी, ले जाए हुए आइंदा भी हमारे लिए मुतलकन गल्ले की बंदिश कर दी गई, ठीक है ना। यानी अगर हम बगैर बिन्यामीन के दोबारा भी गए ना तो हमारे लिए गल्ला मना कर दिया गया, मुनआ मिनल कैलू, हमें नहीं मिलेगा बिन्यामीन के बगैर गल्ला। तो इस सूरत में जरूरी है कि आप हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए, ठीक है, फअरसल मअना अखाना, ताकि दोबारा गल्ला लाने से जो अमर माने है वो मुर्तफे हो जाए। यानी जिस चीज ने दोबारा गल्ला लेने से हमें मना किया हुआ है ना, जो रुकावट बना हुआ है, वो जो कॉज है वो लिफ्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, ठीक है। मुर्तफा का मतलब लिफ्ट हो जाए, हट जाए यानी, तो और हम फिर गल्ला ला सकें, नकतल, हम फिर से गल्ला ला सकें, ठीक। नकतल का तर्जुमा ये यहाँ पे खुलासा तफसीर में लिखा। और अगर उनके भेजने से आपको कोई अंदेशा ही माने है, यानी आपको कोई है कि भाई कोई गड़बड़ हो जाएगी, वो उसको नुकसान पहुंच जाएगा, तो हम उसके लिए ये कहते हैं कि हम उनकी पूरी हिफाजत रखेंगे, इन्ना लहू लहाफिजून, ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस रहने दो, ठीक है। तो हमारे कहते हैं रहने दे, कुछ लोग कहते हैं सिंधी में या पंजाबी में, तो बस रहने दो, ठीक है, मैं इसके बारे में भी तुम्हारा वैसे ही इतबार करता हूँ जैसे इससे पहले उसके भाई यूसुफ के बारे में तुम्हारा इतबार कर चुका हूँ। ठीक है, यानी तुम्हारी तो आदत है ना इस किस्म की बातें जो है वो खूब, यानी कहते ना वो हर मरतबा बड़े कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देना और जो है ना वो यानी आसमान के तारे तोड़ के ला देने के जो है ना वादे करना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, पहले भी तुमने किया था, अब मैं तुम्हारे ऊपर क्या एतबार करूं। तो मोमिन जो होता है ना वो एक सूरा, बल्कि हदीस मुबारक है बाकायदा, ला यल्दगु या ला यल्दगु मोमिन, राइट, कि मोमिन जो है वो एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। वो एक दफा अगर उससे कोई गलती हो भी गई होती है ना, एक दफा बस, उसके बाद वो इबरत पकड़ लेता है, वो उससे सीख लेता है, दोबारा उसी गलती को वो रिपीट नहीं करता। तो याकूब अलैहिस्सलाम तो माशाल्लाह नबी थे, मोमिन, सबसे बड़ा मोमिन तो वक्त का नबी होता है। तो वो पहली दफा जान चुके थे कि ये इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमें भी ऐसी सिफत पैदा करनी चाहिए कि नहीं, कि भाई यानी एक जगह से हम देख रहे हैं झूठ मिल रहा है, एक जगह से हम देख रहे हैं उल्टी सीधी जो है ना वो यानी हमें कहानियां देते रहते हैं, लेकिन फिर दोबारा से हम उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं। हमारी कौम तो माशाल्लाह मोमिन की फिर किसी दर्जे, पता नहीं कौन से वाले दर्जे के ऊपर है, कि फिर वही पॉलिटिशियन, वही जो है वो उल्टे सीधे किस्म के हीरो बनने वाले लोग है ना, हम फिर वही उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट। ठीक है, यानी ये खैर चले, वो फिर एक सियासत की कार दोबारा शुरू हो जाएगी। तो चले, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, कहा मैं तुम्हारे ऊपर क्या एतबार करूं, यानी दिल तो मेरा गवाही देता नहीं, मगर तुम कहते हो कि बिदून इसके गए हुए आइंदा गल्ला नहीं मिलेगा, और आदतन जिंदगी का मदार गल्ले ही पर है, यानी अल्लाह ताला ने ये दुनिया का निजाम बनाया है जिसको आदतुल्लाह भी कहते हैं। दुनिया का निजाम जो अल्लाह ने बनाया है ना उसको कहते हैं आदतुल्लाह, के दुनिया में ऐसे ऐसे काम हुआ करेगा, जब भूख लगेगी तो खाना खाना पड़ेगा, खाना खाए बगैर भूख नहीं मिटेगी। ठीक है ना, प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा इस दुनिया के अंदर, ठीक है, बगैर पानी पिए हुए प्यास नहीं मिटेगी। ये आदतुल्लाह है, ये दुनिया का निजाम अल्लाह ने बनाया है। कुदरतुल्लाह किस चीज को कहते हैं, कुदरतुल्लाह शहाब को कुदरतुल्लाह कहते हैं, वो एक आदमी थे, इनकी बड़ी किताब भी है शहाब नामा। कुदरतुल्लाह किसको कहते हैं, कुदरतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया के निजाम से हट करके कभी कोई काम एक्सेप्शनली कर दें उसको कुदरत कहते हैं, यानी अल्लाह की कुदरत में ऐसा भी मुमकिन था, ये नहीं था कि अल्लाह ताला कोई इस दुनिया का जो निजाम बना दिया तो अब अल्लाह ताला उस निजाम से मजबूर हो गए कि अल्लाह ताला बस उस निजाम के खिलाफ कर ही नहीं सकते, ये अल्लाह की कुदरत में ही नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला की कुदरत में निजाम से हट करके भी करना मौजूद है। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला इससे मजबूर नहीं हुए हैं। तो जब अल्लाह ताला उससे हट के कोई काम कहते हैं ना तो उसको जो है वो इस्तेलाह में कुदरतुल्लाह कह दिया जाता है। ठीक है, तो आदतन का लफ्ज जो है फिर वो आदतुल्लाह से यहाँ पे निकला, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाते हैं। तो आदतन क्या है कि जिंदगी का मदार गल्ले पर ही है और जान बचाना भी फर्ज है। ठीक है, जान बचाना फर्ज फर्ज है, कि मतलब आप अपने आप को हलाकत में ना डालो, ला तो रिकुन, अपने आप को हलाकत में ना डालो। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जब जिहाद का हुक्म आ जाए तो जो है ना वो दुश्मन के तीरों के सामने मत जाओ, राइट, तुम जो है वो काफिरों से जिहाद करने के लिए मत जाओ क्योंकि अपने आप को हलाकत में डालना होगा, कुरान मजीद ने कहा था अपने आप को हलाकत में मत डालो। नहीं, ये वो वाली हलाकत की बात नहीं हो रही, वो तो फर्ज है। जिहाद उस वक्त जो है ना जब हुक्म आ गया, फतवा आ गया, या अमीर का जो है वो फैसला हो गया जिहाद करना है, उस वक्त जिहाद फर्ज हो जाएगा। उस वक्त ये नहीं होगा अपनी जान बचाओ क्योंकि आगे नहीं जाओगे तो फिर राइट जिहाद होगा कैसे। तो यहाँ पर मुराद ये है कि अपने आप को ख्वा मख्वा हलाकत में मत डालो, ये नहीं कि बगैर हलाकत की, बगैर जिहाद की जो अपने आप को हलाकत में डाले चले जा रहे हो फिर सिगरेट पी पी करके, राइट, अब सिगरेट पी करके जो है वो कौन सा जिहाद कर रहे हो तुम, या जो है वो बंजी जंपिंग करके, बंजी जंपिंग भी तो है ना दिमाग का, दिमाग जो है जब कुछ करने को नहीं होता ना, जिंदगी का मकसद तो खत्म हो गया, जिंदगी का मकसद तो गुम हो गया ना मुसलमान का। अब मुसलमान जो है ना वो कहता है यार मैं क्या करूं, मैं इतना मेरे पास एनर्जी है और इतना मेरे पास एम्बिशन है तो अब मैं क्या करूं, चलो जी चलो जल्द करके बंजी जंपिंग करते हैं। तो मर्द लड़कियां जाकर के बंजी जंपिंग कर रही हैं, ठीक है ना, मुसलमान बाहया खातून दीनदार नमाजें भी पढ़ती हैं और पता नहीं ताजुद वाजुद भी पढ़ लेती होंगी, ठीक है ना, ऐसी हैं, लेकिन बंजी जंपिंग कर रही है। क्या मतलब बंजी जंपिंग क्या चीज होती है? वो बड़े से जो पहाड़ और उसके नीचे खाई होती है ना, तो वो एक बड़ी सी जो है ना वो एक रोप लगा देते हैं। अच्छा हाँ, जैसे कोई ब्रिज बना हुआ है बड़ी सी खाई के ऊपर जो है ना, वो कई हजार फीट ऊपर या कई 100 फीट ऊपर जो है ना वो ब्रिज बना हुआ है, तो अब ब्रिज से जो है ना वो रस्सी बांध करके जो है ना वो छलांग मार दे नीचे, ठीक है ना। अब वो रस्सी तो बंधी हुई है, लेकिन ये तो फ्री फॉल नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, हत्ता कि जब रस्सी जो है वो तनेगी, तो फिर जो है ना फिर ये वो इलास्टिक किस्म की लस्सी होती है, रस्सी होती है, अब इससे जो है ये ऊपर उछलते कूदते फिरेंगे और फिर जो है ना बिलाकर उनको ऊपर पुल कर लिया जाएगा। तो ये एड्रेनालाइन अपना जो है ना वो पता नहीं निकालने के लिए जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई जो है वो K2 के ऊपर जा रहा है, तो कोई हिमालय के ऊपर जा रहा है, तो कोई जो है वो अच्छा कि जिनको के ये इस किस्म के फिजिकल यानी शौक नहीं लगे हुए होते, तो वो जो है ना फिर PhD करते हैं, ठीक है ना, वो किसी एक चीज में PhD। अच्छा ये PhD कर लिया, अब मैं फारिग बैठी हुई थी, मैं क्या करूँ, चलो मैंने सोचा कि मैं दूसरी भी चीज में PhD कर लूँ। अच्छा मैं फारिग बैठी थी, मैंने क्या किया था, मैंने सोचा मैं तीसरी भी PhD कर लूँ। एक बच्ची के बारे में हमारे दोस्त ने बताया, पता नहीं लड़की थी, क्या क्या उम्र होगी उसकी, तो उसने कहा कि भाई मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा मैं जो है ना GCSE कर लेती हूँ। तो अब उन्होंने जो है ना वो 5 GSE करने होते हैं GCSE, ताकि आपका ओ लेवल्स मुकम्मल हो जाए। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो और करूंगी, मेरे पास आई हैव टाइम, आई हैव नथिंग टू डू। तो उसने 6 किए, 7 किए, 8 किए, करते करते 32 GCSE कर लिए। फिर उसके बाद वो ए लेवल्स के अंदर आई, तो ए लेवल्स के अंदर आकर के उसने जो है वो जो टोटल 3 A level सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, जिस तरह टोटल 5 या मैक्सिमम 8 जो पाकिस्तान में फिर उन्होंने अपनी इक्विवेलेंस निकालनी होती है, तो उनको 8 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं GCSE के, ठीक है ना, या 5 चाहिए होते हैं इंटरनेशनली, उसने 32 कर लिए। और इसको जो है ना वो अच्छा ए लेवल्स के अंदर 3 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो उसने जो है वो शायद 24 कर लिए, ठीक है ना। उसी तरह से आंटियां बैठी हुई थी पिछले दिनों कहीं पे हरम, वहां पे मुलाकात हुई हमारे घर वालों की, तो पता नहीं वो बताएं, मैं सोच रही हूँ कि मैं अब जो है ना वो मदीना यूनिवर्सिटी जाके PhD कर लूँ, अब मैं फलाने चीज के अंदर जो है ना वो मास्टर्स कर लूँ, ठीक है ना। तो यानी ये आज यही सोच रहा था, और मैंने फिर यही कहा कि जब इंसान फारिग होता है ना, उसकी जिंदगी का असल मकसद जो दे करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान को दुनिया में भेजा था ना, वो असल मकसद तो उसने छोड़ दिया, ठीक है ना। जब असल मकसद गुम हो गया आपकी निगाहों से और आपके पूरे मुआशरे से वो असल मकसद गुम हो गया, तो अब यही चीजें सूझेंगी ना, कोई जो है वो K2 पे चढ़ा होगा, कोई जो है वो जंगल में जा रहा होगा, कोई जो है वो और किसी किस्म की ट्रैकिंग कर रहा होगा, कोई जो है वो PhD कर रहा होगा, तो कोई जो है वो फिर कुछ और कर रहा होगा, ठीक है ना। और वैसे जो कुछ भी नहीं कर रहा होगा, तो वो इन्होंने लिखा आजकल तो सब फारिग यूट्यूब और टिकटॉक पर होते हैं, नहीं सारे फारिग नहीं होते यूट्यूब, ऐसे भी एम्बिशियस लोग हैं जो आज के दौर के अंदर भी ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे हैं, आपको नहीं पता, आप नहीं जानती, पढ़ने वालों को बहुत है पाकिस्तान के अंदर अभी भी, जो कि डबल MA करते हैं और डबल PhD करते हैं और ट्रिपल, और फिर उसके बाद वो पहाड़ पे भी चढ़ते हैं और फिर टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियो बना करके भी डालते हैं। हाँ ये भी साथ साथ चल रहा होता है, टिकटॉक और यूट्यूब भी साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन वो अपने इस मशगलों की जो है ना फिर प्रमोशन के लिए चल रहा होता है। कहने का मकसद मेरा ये नहीं है कि टिकटॉक ज्यादा अच्छा है कि पहाड़ पे चढ़ना ज्यादा अच्छा है, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने इंसान को, मुसलमान को खास तौर पर इस दुनिया के अंदर बंदगी के लिए भेजा था, इंसान को बंदगी के लिए भेजा था, ठीक है ना, कि वो ईमान लेकर के आए और अल्लाह ताला की इबादत करे। और मुसलमान को किस लिए भेजा था? मुसलमान को भेजा था कि वो खाली अपनी जात में इबादत ना करे, अपनी जात में खाली बंदगी ना करे, बल्कि अल्लाह के दूसरे बंदों को भी जो है वो इसके ऊपर लेकर के आए। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, राइट। इस काम के लिए मुसलमान को इस दुनिया के अंदर भेजा था, ना तो खुद बंदगी की, ना किसी दूसरे को जो है वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम किया, राइट। और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इसी के जो, या दावत तो तबलीग इसी के तो फिर इंतहा होती है जिहाद, राइट। तो मुसलमान ने जब जिहाद छोड़ दिया ना, तो अब वो चीज यानी एक तो बढ़ते बढ़ते जो है वो जिहाद तक पहुंचे, पूरी दुनिया के अंदर जो उस जमाने की दुनिया थी सबसे बड़ी जो है वो एम्पायर बनी, ठीक ठीक है ना, तो इस तरह से एक्सपैंड हुए मुसलमान। और फिर उसके बाद जब जिहाद खत्म कर दिया, छोड़ दिया जिहाद को, तो अब क्या हुआ? अब ये नहीं हुआ कि जो था वो वैसा ही रहा, नहीं, बल्कि एक्सपेंशन के बाद अब क्या शुरू हुआ? कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, कम होना शुरू हुए। और कम होते होते जो है वो बिल आखिर क्या हशर पहुंचाए मुसलमानों का, कि ईमान से ही फारिग हो गए, ईमान से ही महरूम होना शुरू। और कसरत के साथ इस वक्त जो मुसलमान मौजूद है दुनिया के अंदर, ईमान उनके अंदर नहीं है, बिकॉज वो एतमाद नहीं कर रहे नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई सारी बातों पर, नहीं कर रहे एतमाद। तो ईमान से जो है वो मुसलमान फारिग हो चुका है। वजह क्या बनी? जिस काम के लिए आपको भेजा गया था आपने वो काम छोड़ दिया। तो फारिग इंसान को तो फिर ऐसी हरी हरी सूझती है ना, किसी को PhD सूझेगी तो किसी को जो है वो उल्टी सीधी और चीजें सूझेंगी। इसका हल ये नहीं है कि PhD करते चले जाओ भाई, कोई मकसद से किसी को, मैं ये नहीं कह रहा PhD करने के खिलाफ, नहीं कह रहा भाई, जो रिसर्च के फील्ड में है और जिसको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगाई है, राइट, रिसर्च की जिम्मेदारी लगाई है, जिसको जो है वो कमाने की भी जिम्मेदारी लगाई है, तो भाई वो करे PhD अपने मशाइख की रहनुमाई के अंदर करे, बल्कि PhD माने मशाइख तो भेजते हैं PhD करने के लिए, ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ घर की, जो जिसको घर की जिम्मेदारी लगाई थी, जिसको किसी और काम की जिम्मेदारी, वो बैठ करके जो है वो भाई तुम दीन क्यों नहीं सीखती हो, तुम दीन को जो है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसके ऊपर क्यों नहीं तहकीक करती हो कि कैसे मैं ये काम अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, राइट। फराइज तो आते नहीं है, हैज का तो पता नहीं है क्या चीज होती है, निफास का तो पता नहीं है क्या चीज होती है, राइट, नमाज पढ़नी आती नहीं है, रोजे के मसाइल पता नहीं है, इखलाकियात की जो है वो रत्ती बराबर आपके अंदर मौजूद नहीं है, हया और पाकदानी का आपको अलिफ बे भी नहीं पता है, राइट। तो उन सब चीजों को सीखने के बजाय जो है वो एक से एक जो है वो सोचती है कि इधर ये भी पढ़ लूं और उधर वो भी पढ़ लूं, उधर भी चले जाऊं उधर भी चले जाऊं, ठीक है ना। तो मकसद जिंदगी को भुला देने का जो है ना, फिर ये अजाब होता है इंसान के, मकसद जिंदगी को भुला देने का फिर ये अजाब होता है, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाही तौर पर भी, ठीक है। तो इसका हल ये है कि वी गो बैक टू द मकसद जिंदगी। जरूरत जिंदगी एक अलग चीज होती है, एक होती है मकसद जिंदगी, ठीक है। इन्होंने क्या लिख दिया अभी लंबा चौड़ा सा, मेरे अब्बू ने किसी डॉक्टर फ्रेंड से बात कर रहे थे, वो अपने बेटी को भी डॉक्टर बना रहे, अब्बू ने पूछा कि आपकी बच्ची सब कि आपके बच्चे सब क्या कर रहे कैसे हैं, तो वो डॉक्टर फ्रेंड ने कहा कि मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ खैरियत पूछने को, तो वो बोलता बोलते कि अब्बू आपका हक आप सिर्फ मेरे पर 25% है, बाकी मेरा खुद हक है अपने पर आपका हक मेरे पर सिर्फ 25% है, बाकी मेरा खुद अपने ऊपर हक है। यानी उन्होंने डॉक्टर बना दिया, कुछ ज्यादा नहीं, वो PhD वाला डॉक्टर तो नहीं बना दिया, तो हमारे हजरत फरमाते हैं ना PhD का मतलब होता है फिरा हुआ दिमाग, ठीक है। तो वो लगता है उन्होंने वो वाला फिरे हुए दिमाग वाला डॉक्टर जो है वो अपने बेटे साहब को बना दिया है। तो अब जब बाप साहब उनको कॉल करते हैं तो वो कहता है कि अब्बू आपका मेरे ऊपर सिर्फ 25% हक है, बाकी मेरा खुद हक है अपने पर। पता नहीं क्या मतलब है इसका, जो भी कहना चाह रहे हैं। बहरहाल, तो भाई इंसान बनाने के से पहले जो है ना, वो जब आप उनको PhD बना देते हैं ना, तो फिर यही होता है, पहले इंसान बनाना था फिर उसके बाद PhD बनाना था भाई। एनीवेज, तो क्या कहते हैं फिर उसके बाद, कहाँ पढ़ते हैं? तो आदतन जिंदगी का मदार गले पर है और जान बचाना फर्ज है। हाँ, फर्ज की बात हो रही थी। तो खैर, खैर अगर ले ही जाओगे तो अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के सुपुर्द वही सबसे बढ़कर निगहबान है, वल्लाहु खैरुल हाफिज़ा। मेरी निगहबानी से क्या होता है, यानी मैंने तुम्हारे साथ जो भी बातचीत कर रहा हूँ ना, तो वो तो मैं बस असबाब के दर्जे में कर रहा हूँ, लेकिन असल में हिफाजत तो अल्लाह ही ने करनी है, और वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है, वो हुआ अरहमुर राहिमीन। मेरी मोहब्बत और शफकत से क्या होता है, यानी मैं जितनी भी शफकत जो है ना वो अपनी जतला रहा हूँ या मैं अपनी दिखला रहा हूँ, असल शफकत और मेहरबानी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की होती है, ठीक है। इसको कहते हैं अल्लाह का जिक्र, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला जो है ना वो हर बात में अल्लाह, हर चीज में अल्लाह, हर ख्याल में अल्लाह, हर जज्बे में अल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह के बगैर तो इंसान का यानी गुजारा ही नहीं हो सकता, इंसान की बात ही नहीं हो सकती, इंसान की सोच ही नहीं हो सकती, ठीक है ना, अल्लाह के बगैर। जब ये हमारे मशायख फरमाते हैं, जो दम गाफिल वो दम काफिर, यानी जो सांस अल्लाह के जिक्र के बगैर निकल गया ना, वो सांस तो कुफर में निकल गया। यानी तो कैसा अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ है, तुम्हारा पैर अल्लाह का दिया हुआ, तुम्हारी हाथ अल्लाह, तुम्हारे हाथ अल्लाह के दिए हुए, तुम्हारी आंखें, तुम जिस जुबान से बोल रहे हो वो जुबान अल्लाह की, और तुम जो है वो अल्लाह से गाफिल होकर के कोई काम कर रहे हो, अल्लाह से गाफिल होकर के, ठीक है। तो याकूब अलैहिस्सलाम की बातें देखें कि हर बात में वल्लाहु खैरुन फाफिदा वहुवा अरहमुर राहिमीन, ठीक है। और फिर दिल में अल्लाह का ध्यान तो वैसे हर वक्त चलता रहे, जुबान में तो फिर कभी थोड़े जुमलों के बाद अल्लाह का जिक्र आएगा ना, ठीक है ना। तो जुबान से तो अल्लाह का जिक्र इतना इंसान कर भी नहीं सकता, जो करने वाला होगा वो भी चंद जुमलों के बाद कभी अल्लाह का जिक्र छेड़ेगा, लेकिन दिल का जिक्र का मामला ये होता है, ध्यान तो हर लम्हे अल्लाह की तरफ रहता है, उससे गाफिल नहीं रह सकता दिल का ध्यान तो कभी भी। हम लोग पहले अल्लाह के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जितना अब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अब आप जान गए हैं माशाल्लाह। तो इतना साल का बुराई, जब तक जब हम तोबा करेंगे तो वो बुराई नेकी में बदल जाएगी, बट अफसोस है। हाँ, आप अच्छी से तोबा करें, अल्लाह ताला खूब राजी करें, तो आपके पिछले सालों की बुराई जो है अल्लाह ताला नेकी में बदल देंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें, जरूर बदल देंगे, बस तोबा की क्वालिटी को अच्छी तरीके से जरा इम्प्रूव करती रहें, ठीक है। तो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की मार्फत और अल्लाह की बंदगी, ठीक है ना, ये चीजें जो है ना वो यानी इंसान इसके ऊपर मेहनत करता रहे करता रहे करता रहे, ठीक है। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अल्लाह की इबादत करते रहो हत्ता के मौत ना आ जाए, ठीक है। तो इस इंस्पिरेशन के साथ जो अल्लाह की इबादत करता है और उसमें बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला उसके पुराने तमाम गुनाहों को नेकी में तब्दील कर देते हैं, और इससे अल्लाह ताला की जन्नत में कोई कमी वाकई नहीं। डोंट, बिल्कुल फिक्र ना करें कि अल्लाह ताला ने अगर मेरे गुनाहों को नेकी में बदल दिया ना, तो अल्लाह की जन्नत छोटी पड़ जाएगी, बाकी बंदों का क्या बनेगा। तो हमें थोड़ा सा इतना इतनी अच्छी तौबा नहीं करनी चाहिए, वरना बाकी बंदों का नुकसान हो जाएगा, उनको जन्नत में जगह ही नहीं मिलेगी। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जन्नत में इतनी जगह है, इतनी जगह है, इतनी जगह है कि सारी इंसानियत के गुनाहों को अल्लाह ताला अगर नेकी में तब्दील कर दे ना, जन्नत में जगह खत्म नहीं होने वाली, बिल्कुल डोंट इवन वरी अबाउट इट, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यार जिस बार बार कहते हैं, पुराने लोग भी तंग आ चुके होंगे सुन सुन करके, कि सीरत क्लास में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का कितना साइज है ना, उसको थोड़ा सा एनालॉजी के जरिए से बयान करने की तौफीक अता फरमाई। तो उस एनालॉजी को देखें या उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप देखें ना कि जन्नत का साइज कितना है, तो यानी मार्फत अल्लाह ताला की जो है ना वो समझ थोड़ी हमें लग जाएगी, थोड़ी समझ लग जाएगी, वरना तो अल्लाह ताला तो है, वो है जो कि हमारे समझ में ना आए, इतना बड़ा है कि हमारी समझ में तो आ ही नहीं सकता अल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन कुछ अंदाजा हो जाए, कुछ पहचान हासिल हो जाएगी कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किस परवरदिगार की बात कर रहे हैं और हम किस परवरदिगार की, किस जन्नत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे फायदा होता है, ठीक है, वाकई फायदा होता है, वरना फिर जो है ना वो शैतान जो है वो ये इसी किस्म के फजूल किस्म के ख्याल डालते रहते हैं, ओ इतना 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 मत नेकी कर लेना, इतना मत जो है ना वो अच्छी तौबा कर लेना, वरना दूसरे बंदों को जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, मसला हो जाएगा, अल्लाह ताला के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तो तुम कम कम जरा नेकी करो, इतना भी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या ये कि कैसे हो सकता है, बस हदीस गलत है, नऊज बिल्ला, हदीस ऐसी है कि भाई हाँ भाई वो बंदा जो है वो फलाने नेकी का काम करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए एक दरख्त लगा देते हैं कि दरख्त इतना बड़ा होता है कि उसका साया जो है ना वो इतना लंबा है कि एक घोड़ा अगर 80 साल तक दौड़ता रहे तो उस दरख्त के साये तक को पूरा नहीं कवर कर सकता। तो शैतान कहता है ये जो है ना ये टू मच हो गया, ये इतना नहीं हो सकता यार, ये जरा दूर की लेकर के आ गए, तो ये इसका मतलब ये है कि हदीस गलत है, ठीक है। तो अगर इल्म हासिल हो ना और समझ हासिल हो जाए, तो शैतान के इन वसवसों का जो है ना सद्देबाब हो जाता है, नहीं, बिल्कुल अदीज गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, इतना ही बड़ा दरख्त है और बड़ी आसानी के साथ इतने जो है वो अनगिनत दरख्त जो है वो जन्नत के अंदर हो सकते हैं, जिनके साये तक जो है ना वो 80 साल तक कोई घोड़ा ना पहुंच सके, कोई मसला ही कोई नहीं है इसके अंदर, तो ठीक है। किसी ने लिखा कि मैं हर रोज तौबा करती हूँ अपनी बीती जिंदगी के गुनाहों पर, लेकिन दिल से वो बोझ और निदामत खत्म नहीं होती। भाई, बीती हुई जिंदगी के गुनाहों पर तौबा करना जो है वो हमारा काम है, और तौबा करते रहना ये भी हमारा काम है। ठीक है, तो इसमें बुराई नहीं है कि आप रोजाना तौबा करती हैं, और ठीक है, तौबा एक ऐसी चीज है जो कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया है करने का। ठीक है ना, तो अगर किसी के बीती हुई जिंदगी परहेजगारी पर मुश्तमिल होती ना, उसने एक भी गुनाह नहीं किया होता अपनी बीती जिंदगी में, उसको फिर भी तौबा करनी। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तौबा का हुक्म तो भाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबको दे दिया। अल्लाह ने अपने नबी को भी तौबा का हुक्म दे दिया, अपने सहाबा को भी तौबा का हुक्म दे दिया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि तौबा से तो कभी भी नहीं खत्म होना, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। लेकिन एक और चीज होती है जिसको कहते हैं ना मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है ना, या जिसको कहते हैं, जिसको डिप्रेशन आप कह सकते हैं, या एंग्जाइटी उसको कह सकते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी के कुछ अल्फाज हैं जो कि मेडिकल कंडीशंस हैं इसके लिए। ठीक है, इनका ताल्लुक रूहानियत के साथ नहीं है, इनका ताल्लुक ये गुनाहों के ऊपर नादिम शर्मिंदा होने से नहीं है, ये मेडिकल कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई इस किस्म की मेडिकल कंडीशन है ना, ये एक अलग चीज है, दिस नीड्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, और आजकल बहुत ही मुशाहदे में आ रहा है कि पीपल आर मिक्सिंग दीज टू थिंग्स अप। ठीक है ना, एक है उनकी नफ्सियाती बीमारी और एक है रूहानी बीमारी। तो रूहानी बीमारी के लिए तौबा करते करते जो है ना, वो अपनी नफ्सियाती बीमारी को रूहानी बीमारी के अंदर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है ना, और समझना शुरू हो जाते हैं कि वो नफ्सियाती बीमारी जो है ना, वो नफ्सियाती नहीं है, वो रूहानी है, यानी एक मिक्सअप बना हुआ है इस वक्त। ठीक है, तो इन दोनों को जो है ना, वो जरा अलग रखने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला से दुआ मदद भी मांगें कि अल्लाह मैं इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहती, ये एक नफ्सियाती बीमारी है, इसका जो है वो नफ्सियाती इलाज एक अलग चीज है। ठीक है ना, और गुनाहों के ऊपर नादिम और शर्मिंदा होना ये एक रूहानी प्रोसेस है जो कि नबी को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो मैं क्यों नहीं करूँ वो वाला काम। ठीक है, नफ्सियाती बीमारी जो होती है ना, वो एक अलग चीज होती है, वो होती है इंसान के, या तो कोई फिजिकल डिसऑर्डर होता है उसके अंदर, कोई जो है वो उसके जो 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 उसके अंदर जो जो हार्मोन सिस्टम है वो कोई डिसबैलेंस हुआ हुआ होता है। ठीक है ना, यानी पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है, किसी बीमारी के तौर पर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है कि वालिद साहब जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थे, या किसी और किस्म का शिकार थे, तो वो या वालदा थी, तो वहां से जो है वो आपको जेनेटिकली जो है वो नफ्सियाती बीमारी ट्रांसफर हो गई। ठीक है ना, तो उस वजह से आपके आपके हॉर्मोन्स भी जो है वो मैसअप हुए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसका जो है या तो डॉक्टर साहब से उसका दवा ववा लें, या उसके लिए कोई और इस किस्म की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है ना, या ये कि कुछ माहौल वगैरह के ऐसे असरात होते हैं, जैसे बहुत जो है वो बचपन के अंदर यानी मुश्किल हालात रहे, घर के अंदर मारपीट वगैरह का मामला रहता था, लड़ाई झगड़े का मामला रहता था, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिंदगी के अंदर, नाउज़ बिल्ला। ठीक है, कि जिस इंसिडेंट की वजह से जो है ना वो नफ्सियाती डिसऑर्डर हो पैदा हो गया। ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं, वो अलग उनके मुहर्रकात होते हैं, और उनके अलग जो है ना वो फिर इलाज मुआवजे का तरीका होता है, वो एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है ना, तौबा, गुनाह, नेकी करना, इरादा करना, ये सब कुछ जो है ना, ये रूहानी दुनिया की बात है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, नहीं, रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, यानी रूहानी जो इंसान में बेहतरी आती है, उससे उसके नफसियाती हालात भी बेहतर होते हैं। ठीक है ना, एक पॉजिटिव असर आता है उसकी नफसियात के ऊपर भी। ठीक है, और रूहानी बीमारी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उसका असर जो है पर नफ्सियात के ऊपर भी आता है इंसान की। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर किसी के अंदर गुस्से वाली रूहानी बीमारी बढ़ गई, अब वो रूहानी बीमारी गुस्से की है, लेकिन उसकी वजह से जो है ना उसने अपने आप को या तो कोई बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा दिया, या अपने किसी घर वाले को नुकसान पहुंचा दिया, तो भाई उससे जो है वो नफ्सियाती बीमारी में पैदा हो गई, हालांकि गुस्सा असल में रूहानी बीमारी थी। ठीक है ना, लेकिन उसके नतीजे में फिर नफसियाती प्रॉब्लम्स भी जो है वो पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो आपस में दे आर रिलेटेड। ठीक है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई मैं तो तौबा करती हूँ और मेरे ऊपर जो है ना वो एक अजीब गरीब किस्म की जो है वो बोझ रहता है और ये रहता है, तो दैट समथिंग डिफरेंट, ये नफ्सियाती प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्योंकि तौबा करने से इंसान के दिल का बोझ खत्म होता है और उसको तत्मइन्नुल कुलूब मिलता है, तत्मइन्नुल कुलूब। तो भाई आपको तत्मइन्नुल कुलूब क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना, दैट मीन्स यू आर मिक्सिंग थिंग्स अप, ठीक है। बात कुछ समझ समझा पाए हूँ या नहीं। और आपने क्या कहा, वी हैव ऑल्सो हर्ड फ्रॉम अशायद दैट डिप्रेशन इज कॉज बाय जुल्मत ऑफ कैन, सो आर दे लिंक्ड एज वेल। जी सॉरी आपका मैंने अभी पढ़ा, जी, बात अभी हो चुकी, देर इज अ लिंकेज, ठीक है। लेकिन जो अभी बात हुई ना कि तौबा से तो तत्मइन्नुल कुलूब मिलना था, अगरचे कि तौबा बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए, और तौबा नदामत के बगैर हो ही नहीं सकती, तो नदामत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपके दिल के ऊपर एक बोझ और उस किस्म की कोई चीज है, ठीक है ना, जो कि एक नफसियाती या एक फिजिकल इलनेस के किस्म की चीज है, ठीक है। तो सॉरी, मैं मेरा मतलब ये नहीं था कि आप ही के साथ ऐसा है, लेकिन आपके सवाल से जो है ये गोरा की डिस्कशन जो है ना, ये ट्रिगर हो गई, और हो सकता है किसी और के लिए बात अप्लीकेबल हो, आपके लिए ना भी हो अप्लीकेबल। आप कहना कुछ और चाहनी थी, मैंने कोई और बात शुरू कर दी, तो इसके लिए माजरा, ठीक है। अच्छा, खुलासे तफसीर कम से कम अगर आज जल्दी से पढ़ लेते हैं, तौबा शरायत के साथ ना हो तब भी ऐसा होता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल आपने सही सही कहा। उन्होंने लिखा है कि तौबा अगर अपनी शरायत के साथ ना हो तब भी ऐसा होता है, हाँ, क्योंकि तौबा तो उस वक्त हो गई अब तीनों शरायत पूरी होंगी, तो हो सकता है आप नादिम 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 तो बहुत हो गई, लेकिन इरादा करने का जो है वो वाली शर्त पूरी नहीं कर रही, कि आइंदा ना करने का इरादा, वो वाली शर्त पूरी नहीं करी, ठीक है ना। और तीसरी जो शर्त थी कि भाई आपने कुछ करना भी था तौबा के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक साहब है, पता नहीं क्लास में है कि नहीं है, बहुत जो है ना, मैं फिर गुनाह में मुब्तला हो जाता हूँ, फिर जो है मैं क्या करूँ, और मैं ये करूँ, और मैं फिर जो है वो मेरे गिर्द जो है वो सारा माहौल खराब है, और ये खराब है और वो खराब है, सारी दुनिया कसूरवार है सवाए एक मेरे, राइट। असल में आप ये कह रहे हैं, अगरचे कह नहीं रहे कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, इंसान की जुबान उसके अहवाल का साथ नहीं दे रहे होते हैं, इंसान की जुबान उसके अहवाल का साथ नहीं दे रही होती है, अहवाल कुछ बता रहे हैं, आप जुबान से कुछ कह रहे हैं, ये भी होता है ना, ठीक है ना। तो भाई अल्लाह ताला ने तीसरी शर्त पूरी करने के लिए बेशुमार मौके हमें दिए हुए हैं, हत्ता के बुरे माहौल से निकलने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ रिस्क का भी इंतजाम कर दिया है, तो अब आप बुरे माहौल से निकल करके जाना क्यों नहीं चाहते, ये आपका मसला है, नहीं जाना चाहते ठीक है, आप मरते रहे सड़ते रहे उसी माहौल के अंदर, और मरने के बाद जो है वो कब्र में जाकर के सड़िएगा, जहन्नुम में जाकर के सड़िएगा, ठीक है ना। तो भाई जब अल्लाह ताला ने की तो दुनिया वसी है ना, देखें देखें ये जो बहानेबाजियां हैं ना, ये अल्लाह ताला के साथ नहीं चलती। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ऐसे बड़े नेक लोग हुआ करते थे, सो कॉल्ड नेक, बस हम मजबूर हैं, हम तो चाहते हैं नेक बन जाना, हम तो चाहते हैं सब कुछ कर देना, हम तो गुनाहों से बड़े परेशान हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को कुछ कहे करने के लिए वो नहीं करना। तो अब ये नहीं है कि वो बड़े बड़े माशाल्लाह अल्लाह ताला उनसे जो है ना वो बड़े खुश हैं, कि तो चाहते हैं करना, बड़े नादिम हैं, बड़े नदामत हो रही है, लेकिन जो है ना वो बेचारे नेक नहीं बन रहे, तो अब क्या करें, तो चलो उनको जन्नत पर डाल देते हैं। नहीं, जब तुम्हें कुछ कहा गया था करने के लिए, तुम करते क्यों नहीं हो वो वाला काम, अब जाओ जहन्नुम में, अब जाओ तुम जहन्नुम में, ठीक है ना। तो खाली बातें बनाने से जो है ना कोई फायदा नहीं है, या हम किसको उल्लू बना रहे हैं, है ना, शेख साहब को तो उल्लू बना लेंगे, अल्लाह को तो उल्लू नहीं बना सकते ना, नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला, ठीक है ना। अल्लाह ताला को तो नहीं हम धोखा दे सकते, अल्लाह ताला की जमीन तो भाई वसी है, और उस जमीन में अल्लाह ताला ने जराए रखे हुए हैं, तबलीगी जमात रखी हुई है, मशाइख की खानकाएं रखी हुई हैं, और जो है वो माहौल छोड़ करके किसी बेहतर माहौल में चले जाना रखा, आप नहीं चाहते करना, तो यू आर दी ओनली वन टू ब्लेम, एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू विल हैव टू पे फॉर इट, तुम्हारी जो है ना ये अदाएं जो है ना, ये तुम्हें इस अदाब से नहीं बचा सकती। बात समझ में आ रही है। तो तौबा की तीन शरायत होती हैं, सिर्फ नदामत करने से तौबा नहीं हो जाती। अल्लाह को जदाए खैर दे, आपने बहुत अहम बात जो है वो यहां पे छेड़ दी है, सिर्फ नादिम होने से तौबा नहीं होती। तो दो शर्तें पूरी नहीं कर रहे तो भाई फिर आपके ऊपर बोझ ही रहेगा ना, क्योंकि गुनाह तो आपके खत्म नहीं हुए, तौबा तो आपकी हो ही नहीं, तो गुनाहों का बोझ तो फिर दिल के ऊपर रहेगा, क्या ख्याल है, समझ में आई बात? ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला से ना करने का इरादा भी करना है, ये नहीं कि नहीं मैं फिर कल फिर मैं दोबारा करूंगी, मैं तो जस्ट कैंट लिव विदाउट इट, मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकती। कल मैंने फिर जा करके ड्रामा तो देखना है, कल फिर जा करके मैंने फलाने शख्स से तो बात करनी है, नहीं, इरादा अल्लाह ताला के साथ जब करेंगी तब तौबा होगी। और तीसरी शख्स ये कि माहौल को तब्दील करेंगी, यू विल हैव टू मेक हिजरत, हिजरत करनी पड़ेगी, घर छोड़ के जाने को कोई नहीं कह रहा, वो फिजिकल हिजरत जो है ना वो अब हर बंदा ना तो कर सकता है ना करने को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन माहौल की हिजरत, जिन लोगों के साथ दोस्तियां बनाई हुई हैं उनको ठुड्डे मारने होते हैं, उनको धक्के देने होते हैं, नहीं सॉरी आई डोंट हैव टाइम फॉर यू एनीमोर, ये तीसरी शर्त है। तीन शर्तें पूरी होंगी तो फिर तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ताला का वादा है, कोई नहीं सकता कि अल्लाह ताला का वादा झूठा हो, आप झूठे हो सकते हैं, अल्लाह ताला का वादा झूठा नहीं हो सकता, हो सकता है, क्या ख्याल है आप? नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोल सकती, अल्लाह ताला का नाउज बिल्ला वादा ही झूठा होगा, जी नहीं, आप झूठे हैं, अल्लाह ताला का वादा झूठा हो ही नहीं सकता, हम झूठे हैं, अल्लाह ताला का वादा झूठा नहीं हो सकता, आपसे मुराद हम। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्लास खत्म ही कर देते हैं, बाकी खुलासा तफसीर इंशाल्लाह कल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। वाखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।